वंचा कल्प दरोभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो जगतां सुरतो पंगो मम मन्दमते सती मत्सर्वत्र पदां भोलो दिव्यं वृन्दारण्यकल्पत्रुमाख्य श्रीमदरत्नागारसिंहासनस्थो श्रीमदराधा श्रीमगोविन्ददेवो श्रीमारायणसारम्भे मम शिवतस्तदस्थिता करुणावेणुदयो गोपीनाथं प्रियेऽस्तु नः जयति जन्निवासो देवकी जन्मवारो यदुवरपरितस्मैदौभिन्यस्तधर्मम् स्थिरतरविजिनग्नम् सुस्मितम् श्रीमुखेन मृगपुरवरितारामदेव जयति जयति देवो देवकीनन्दनो जयति जयति कृष्णो विष्णुवंशप्रदीप जयति जयति श्यामो मेघतो मलाङ्गो जयति जयति पृथ्वी भारनाशोमुकुन्द जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द प्रियद्वै सदगाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा हरे कृष्णो कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे
श्रीमद् भागवतम संस्करण अध्याय सात श्लोक संख्या 25 तथा अयम च अवतार ते भुवः भार जिहिर्षया स्वानां च अनन्यभावानां अनुध्यानाय च असकृतः तथायं चावतारस्ते भुवो भार जिहिर्षया स्वानां चानन्यभावानां
ब्रह्मानां प्राणन्य भावानां
अनुध्यानाय च सकृत
अनुध्यानाय च सकृत
तथायं चावतारस्ते
तथायं चावतारस्ते
भुवो भारजिहिर्षया
भुवो भारजिहिर्षया
वानां चनन्य भावाना
वानां चनन्य भावाना
अनुज्ञानाय च सकृत
अनुज्ञानाय च सकृत
तथायं चावतारस्ते
तथायं चावतारस्ते
भुवो भारजिहिर्षया
भुवो भारजिहिर्षया
स्वानां चानन्य भावानां
स्वानां चानन्य भावानां
अनुध्यानाय चासकृत
अनुध्यानाय चासकृत
तथायं चावतारस्ते
तथायं चावतारस्ते
भुवो भारजिहिर्षया
भुवो भारजिहिर्षया
स्वानं चानन्य भावानां
स्वानं चानन्य भावानां
अनुध्यानाय चासकृ
अनुध्यानाय चासकृ
तथायं चावतारस्ते
तथायं चावतारस्ते
भुवो भारजिहिर्षया
भुवो भारजिहिर्षया
स्वानां चानन्य भावानां
स्वानां चानन्य भावानां
अनुज्ञानाय चासकृत
अनुज्ञानाय चासकृत
तथायं चावतारस्ते
तथायं चावतारस्ते
अनुज्ञानाय चासकृत
अनुज्ञानाय चासकृत
तथायं चावतारस्ते
तथायं चावतारस्ते
भुवो
भारजिहिर्षया
स्वानं चानन्य
भावानां अनुज्ञानाय चास्कृत
तथा
इस प्रकार
अयम्
अयम्
यः
च
तथा
अवतार
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 ते
आपका
भुवः
भौतिक
जगत का
भार
बोझ
जिहिर्षया
दूर करने के लिए
स्वानां
मित्रों का
च
अनन्य
भावानां
तथा अन्य भक्तों का अनुध्यानाय बारंबार स्मरण करने के लिए च तथा असकृत पूर्ण रूप से प्रसन्न अनुवाद एवं तात्पर्य ऋषि भक्ति राम स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार आप संसार का भार हटाने तथा अपने मित्रों तथा विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले आपके अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए अवतरित होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं। सभी जीव भगवान से संबंधित है, वे सबों के लिए समान है, फिर भी वे अपने जनों तथा भक्तों के प्रति विशेष अनुरक्त रहते हैं। भगवान सबों के पिता हैं, उनका पिता कोई नहीं हो सकता और न कोई उनका पुत्र बन सकता है। उनके भक्त ही उनके इष्ट मित्र तथा उनके परिजन हैं। यह उनकी दिव्य लीला है। इसका संसारी संबंधों पितृत्व या अन्य किसी से कोई प्रयोजन नहीं होता। जैसा कि ऊपर कहा गया है, भगवान प्रकृति के गुणों से ऊपर है, अतएव भक्ति में उनके इष्ट मित्र तथा संबंधियों में संसारी रिश्ते जैसी कोई चीज नहीं है। तो श्री अर्जुन जी यह श्लोक बोल रहे हैं, हमें भक्तों को ज्ञात होना चाहिए कि अर्जुन भी कोई सामान्य भक्त नहीं है, साक्ष्य भक्ति के आचार्य हैं और पुराणों के अनुसार साक्षात नारायण के ही अंश से प्रकट नर है। नर नारायण के अवतार में अर्जुन जी नर है और ये बात का प्रमाण जब हम भागवतम के प्रथम स्कंध के विकास सुदामा प्रसंग के बाद 83 अध्याय में जब द्वारिका के ब्राह्मण की पुत्रों की हत्या हो रही थी और उस समय अर्जुन प्रतिज्ञा लिए और भगवान फिर उसको पूरा करने के लिए रथ चलाते हुए ब्रह्मांड के कबर को फाड़ते हुए जब होमापुर जहाँ पर भगवान विष्णु स्वयं करते हैं शिवदत्त सागर में वहां पहुंचे और तब वहां पर भगवान विष्णु ने साक्षात कहा कि मैं आपका दर्शन करना चाहता था नर नारायण का। भगवान ने स्वयं कहा, इसीलिए मैं ब्राह्मण पुत्रों को लाया था, आप ले जाएंगे। तो नौ पुत्र मर गए थे और तो नौ पुत्र को जिंदा वापस किया गया। लंबी कथा है पर हमें उपदेश वहां पर मिलता है कि अर्जुन कोई सामान्य नहीं और प्रकट लीला में भी इंद्र के अंश से प्रकट हुए थे और भगवान शिव के भी परम शक्ति कृपा प्राप्त रहे। भगवान शिव इनके ऊपर बहुत प्रसन्न हुए थे और उनको पाशुपत शास्त्र दिए थे शिव जी स्वयं। तो इंद्र शिव आदि देवताओं जिनके ऊपर कृपा बरसाते हैं, कृष्ण जिनके सखा हैं, होमा पुरुष विष्णु जिनका दर्शन करना चाहते हैं, उर्वशी जैसे अप्सराएं जिनके जिनको देखकर मोहित हो जाती है, परम तप शब्दों के लिए आया है, अनग शब्द आया है, भारत टाइटल आया है अर्जुन के लिए, तो इन सारी बातों से हमें स्पष्ट पता चलता है कि अर्जुन बहुत उच्च स्तर के वैष्णव प्राप्त है और स्वभाव से भी सरल इच्छा आदि से मुक्त है, गुणों में भी बहुत गुण है और भगवान के विश्व रूप को भी अर्जुन जी ने गीता में हम देखते हैं कि देखा है अपनी आंखों से, है ना, दिव्य दृष्टि दिया। तो भगवान के स्वभाव को तो अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि साथ में रहते हैं और भगवान के तत्व को अर्थात सृष्टि वैभव को वो भी उन्होंने देखा। तो सही कृष्ण तत्व रहता है, जो कृष्ण तत्व रहता है वही तो गुरु है और कृष्ण तत्व और स्वभाव को पूर्ण रूप से जानने वाले और उनको पूर्ण समर्पण और भक्ति करके भगवान को वश में रखने वाले अर्जुन जी यह श्लोक बोल रहे हैं। परम उपाधि है ना, महिमा कृष्ण की अनंत है और केवल भक्त ही समझ सकते हैं, भक्तों के मिल कथा चाहिए थी और विशेष रूप से भगवान की स्तुति जब अर्जुन करते हैं, भगवान रथ पर है अभी भी ड्राइवर है, मालिक ड्राइवर की स्तुति कर रहा है, भगवान रथ चला रहे हैं और अर्जुन भी बैठे हैं तो स्तुति कर रहे हैं, तो ऐसे ही हुआ ना, बाहरी बाहरी दृष्टि से हम देखे तो, लेकिन वो जानते हैं कि भले आप हमारे रथ चला रहे हैं लेकिन आप सर्वे सर्वा है। तो अगले श्लोक में अर्जुन जी ने कहा, विधत् से श्रेय आप संसारी जीवों का माया मोहित चेतस्र जो माया के मोह से वशीभूत हो चुके हैं, अविद्या से भर चुके हैं, ऐसे जीवों को परम श्रेय प्रदान करने के लिए आप प्रकट होते हैं, है ना, अर्जुन ने कहा है। और श्री सवीर आपके शौरत्व विद्यादि अर्थात आपके सद्गुण जो है समस्त शौर्य बल, और उससे आप धर्म के लक्षण को प्रकट करने के लिए या उनका रक्षण करने के लिए जीव लोक से अद्भुत से अपने स्वरूप में प्रकट होते हैं। तो माया मोहित क्षेत्र से पूरा विश्व ब्रह्मांड में चर अचर जितने भी जीव है, चाहे देवताओं से जो गंधर मनुष्य जो भी, सभी माया के वशी होते हैं। माया से परे कोई नहीं, कोई थोड़े कोई ज्यादा, हम लोग भी माया में लेकिन हम कम है, कुछ लोग पूरा दे गए है माया मोहित क्षेत्र सब। इसलिए गौरांग प्रभु गाय के कत निद्रा जाओ माया पिचासी रखो, कब तक सोओगे माया रूपी पिचासी की कोले, कोले माने कोले माने क्या होता है पुरुषोत्तम ब्रह्म कोले कोले कॉल कॉलिंग शब्द है ना, कत निद्रा जाओ माया पिचासी रखो। तो कब कत कब विद्रा और माया के जो पिचासी है चुड़ैल है और उसने अपनी गोद फैलाई है, उसमें तुम माया रूपी गोद उसमें तुम निद्रा लेकर सोए हो, तो माया पिचासी की गोद में कोले मतलब गोद खोड़ो खोड़ा मा कोले मतलब खोड़ो। कत कब तक सोओगे पूरा चांद कृष्ण कह रहे जागो 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 जागे हुए हैं, जागे हुए भी सोए हुए हैं हम लोग, मोह निशान या निशान करो सोए हैं। सत्यनाथ ठाकुर का ये भजन पद बड़ा आस्वादनीय है, माया मोहित चेत सं भजिया बोली वो से संसार भीतर तुम जब थे माँ के गर्भ में थे तब कष्ट पीड़ा से आक्रांत थे और कृपा करके मैंने तुमको दर्शन दिया, तो तुमने कहा था कि प्रभु यहाँ से बाहर निकालो मैं भजिया आपका भजन करूंगा, भजिया नहीं खाऊंगा भजन करूंगा। भजिया बोली बो तुम ही बोले थे कि हमें तुम्हारा भजन करी वो, पर तुम भूल गए बाहर आए तो तुम अंदर प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु इस ताप से इस कष्ट से हमको बाहर निकालिए मुक्त करिए मैं आपका भजन करूंगा। तो भजन करने के लिए तुमको बाहर निकाला और तुम भोग करने लगे, भोग योगी की जगह भोगी बन गए। भूलिया रही तुम्हें अविद्या भरे भूल गए और अविद्या अविद्या अर्थात अज्ञान तम रजस आदि गुणों के प्रभाव निद्रा आलस में भूल गए, तो फिर तुम भूल गए हो तो मैं तो नहीं भूला। जीव भगवान को भूले हैं लेकिन भगवान तो नहीं भूलते अपने पुत्र, इसलिए वो फिर आए गीता का ज्ञान देकर गए थे लेकिन ये भूल गया, तो भगवान फिर आए। चैतन्य महाप्रभु कहते तुम्हारे नहीं अवतार तुम्हारे लिए मैंने अवतार लिया है, तुम्हारे लिए रघुनाथ जी तुम्हारे लिए आपके लिए स्पेशल स्पेशल फॉर यू केवल आपके लिए। चैतन्य महाप्रभु सबको कह रहे हैं तुम्हारे लिए मैंने अवतार लिया है, हमको क्या जरूरत है गोलोक से इधर आने की, आपके लिए अवतार लिया है। तो कहते हैं कि ठीक है आपने होता नहीं कि मेरा बहुत इधर है बंधु भाई चाचा चाची पति पर बहुत संबंध है, आने बिना बंधु यार क्या मेरे बिना मेरे अलावा तुम्हारा असली मित्र बंधु कौन है, ये सब तो तुम्हारा स्वार्थ पूरा अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए तुमको शोष रहे। जिस पत्नी को तुम समझते हो कि ये मेरी बंधु है वो दिन भर पसीने के रूप में शरीर को सोचती है और रात को पीर जाती खून के रूप में, दिन को जागिनी रात को वागिनी इसलिए ऐसा कहा है हमारे एक आचार्य ने। उसी सपने के पालन के लिए रात भर गधे की तरह काम करता है दिन भर, तो पसीना तो शरीर से रात में मैथना भी सूख के हुई है खून न से, तो बाघन क्या करती है खून पीती है ना, यही तो हो रहा है। और दाकन क्या करती है
ओके
तो जागो, मैं हूँ तुम्हारा असली मित्र, सुजनम सर्वभूतानां, आई एम योर रियल फ्रेंड, मैं आपका असली मित्र मैं हूँ। और तुम कहीं और दुख देख रहे हो, समान उपनिषद कहता है कि मित्र रूप में भगवान एक वृक्ष पर समान बैठे परमात्मा के रूप, गतिर भरता प्रभु साक्षी सुयदम निवासम शरणम, सर मैं हूँ, मेरे बिना तुम्हारा असली मित्र कोई नहीं, हमें बिना बंधु हार किया के तुम्हारा कौन है तुम्हारा बंधु, मैं दे रहा हूं तुमको हवा पानी शरीर, उद्धार मैं करूंगा, कैसे करेंगे, क्या दवाई है, क्या इस भवरोग से शांत करने के लिए, हाँ लाया हूं मैं एक सुंदर दवाई लाया हूं, मुफ्त में, मुफ्त फ्री ऑफ चार्ज रियल मेडिसिन भवरोग को नष्ट करने के लिए आपके लिए लाया हूं, नसी औषधि माया नसी बार लागी, जीव अजीत प्रभु जी, जीव आप जीव हो, आपके लिए एक दवाई मेडिसिन औषधि लाया हूं, कौन सी औषधि है, श्री हरि नाम मंत्र मागी, हरिनाम महामंत्र बोलो के रो प्रेम धन आपके लिए लाया हूं, तो दे दीजिए, नहीं मांगो, मांगोगे तब दूंगा आपके लिए ही है, लेकिन आत्म लालसा होनी चाहिए हमको दीजिए। तो महाप्रभु ने कहा तो चतुर शिरोमणि भक्ति विनोद ठाकुर चरण में गिर गए हो, आज मेरे लिए लाए हैं, मांगने को कह रहे थे, मैं भीख मांग रहा हूं आपसे, चरण में गिर गए, भगवती विनोद प्रभु चरण पढ़िया श्री हरि नाम मंत्र लई न मागिया, दे दीजिए हमको जो हमको और कुछ नहीं चाहिए, हरि नाम मंत्र दे दीजिए, अब मेरे लिए लाया है, मेरे लिए अवतार लिए हैं और मेरे लिए मेरे उद्धार के लिए आप इतना सुंदर औषधि को चरण में गिरते हुए मांग लिए, ये भाव है हम लोग का। अगर आप भरिनाम में लिस्ट, हम आप रौदा जी कहते थे 99% अवर डिवर्सन लाइफ, हमारे जीवन के 99% प्रगति हरिनाम के ऊपर आधारित है, अगर आप सीरियस होना हमारा हरिनाम जब जितना स्ट्रॉन्ग गुस्सा श्रद्धा से भाव से लालसा पूर्वक करते हैं, तो प्रभुपाद कहते आप कुछ मत पढ़ो, वेद मत कुछ नहीं, सिंपली चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, कृष्णा कमिंग, कृष्ण आएंगे आपके पास आपको लेने के लिए, और उस हरिनाम में रुचि प्रेम बढ़ाने के लिए वैष्णव सेवा भागवत श्रवण, तो अगर हरिनाम सरल बाद हम लोग का ये भाव होना चाहिए भक्तों के पास, क्या आपको तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, आप कृपा करिए वैष्णव, एक हरिनाम में मेरी श्रद्धा हो जाए, मुझे रुचि बढ़ जाए, ऐसी कृपा करिए, आपका धन है, आपकी संपत्ति है हरिनाम, आप हम पर कृपा करिए कि हरिनाम में हमारी आसक्ति रुचि अनुराग बने, ये भाव, और ऐसा करने से क्या होगा, माया पिचासी छोड़ देगी, माया के कोले से खोले से गोद से आप उठ जाओ, ऊपर उठ जाओ। तो अर्जुन कह रहे हैं यहां पर कि हे कृष्ण, माया से मोहित इस बद्ध जीव के ऊपर परम करुणा करके आप प्रकट हुए, उतार लिए, परम श्रेय, एक शब्द कल के श्लोक में आया होगा परसों, श्रेय अर्जुन जी ने गीता में भी यही कहा है, यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहितम्ये, श्रेय में श्रेय तन्मे में
श्रेय मेरा श्रेय जिसमें है तब ब्रूही कहो, ब्रूही माने कहो। आप मेरा मंगल मेरा परम श्रेय जिसमें है वस्या वह कहिए। जो आपको कहो मैं, क्योंकि अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते मैं आपका शिष्य बन गया, अब आपका मित्र नहीं हूं, मैं आपका शिष्य बन रहा हूं। शिष्य शिष्य का अर्थ होता है जो शिष्य काट के भी आप आज्ञा करिए क्या करना है मुझे, मेरा कोई विचार नहीं है, कोई स्वतंत्र कुछ नहीं। एक संत उदाहरण देते हैं, एक मुसलमान भक्त थे और उनकी शरण में कई लोग खुदा को प्रार्थना करते थे। तो एक बंदा बंदा कहते हैं वो लोग खुदा के बंदे, वो लोग कहते हैं ना भगवान ना भगत थे, वो लोग कहते खुदा के बंदे हैं, एक ही बात है। अगर खुदा के बंदे नहीं है तो हम हिंदी में बंदे हो गए, हिंदी में बंदे मतलब मंकी बंदर। तो माया के बंदे हैं अभी हम, अभी माया के बंदे, खुदा के नहीं है, खुद के हैं। खुदा की जगह खुद हो गए हैं खुदा। तो सुरक्ष शरण में आया, आपकी शरण में रखे, ओके ठीक है, बहुत लोग हैं आप भी रहिए। तो मैंने कहा हमारे आश्रम में आप रह सकते हो, खुदा को बंदगी करना है, बंदगी माना प्रार्थना प्रेयर, और कुछ काम करना नहीं है, केवल प्रार्थना करनी है, तो ठीक है करेंगे आपके साथ में। तो फिर उन्होंने पूछा कि आप क्या खाओगे, बोलोगे जो आप देंगे वो खाएंगे, आप क्या सेवा करोगे, जो आप कहेंगे वो करेंगे। जो भी पूछा जा रहा था वो कह रहे थे कि ये करेंगे, तो बोले आप कहो आप बोलो। हमने कहा कि तुम्हारा स्वतंत्र कोई विचार, बोले मैं आपका दास हो गया हूं तो मेरा मन बुद्धि कोई स्वतंत्र विचार, दास का कोई अपना विचार नहीं होता, दास का एक ही धर्म होता है प्रभु आज्ञा पालन। सेवक गति सेवक धर्म अति कहम, भरत जी ने कहा है रामायण में कि सेवकाई करना, सेवक धर्म जो है ना बड़ा गहन है गंभीर है। सिर भर जाओ उचित सुमोरा सब ते सेवक धर्म कठोरा। भरत महाराज जा रहे थे रामचंद्र जी के पास चित्रकूट में, उनके मंत्रियों ने कहा कि आप तो राजकुमार है, आप बैठ जाइए रथ पर बैठ जाइए। तो भरत महाराज पैदल चल रहे थे, बोले मेरे स्वामी मेरे प्रभु राम जहां पर श्री चरणों से चले हैं, सेवक उसके पीछे पीछे, स्वामी नीचे चले सेवक कैसे ऊपर चल रथ पर बैठ सकता है, नहीं बैठे। और फिर आगे गए, थोड़ा आगे गए तो उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों को देखा और पहचान गए प्रभु अपने सेवक के चरणों को, सेवक शस्त्र और रामचंद्र के चरणों में तो सुंदर चक्र के 19 चिन्ह के निशान है, और माता पृथ्वी अपने स्वामी के चरण कमल को मिटने नहीं देती थी। तो जैसे ही भरत जी ने देखा तो मान हो रंकन, जैसे रंक व्यक्ति खजाना पा जाए, भिखारी व्यक्ति को अचानक खजाना मिल जाए तो उसको कितना सुख हुआ, इतना सुख हुआ भरत जी को। और चरण की रज पर माता पे के आंखों में लगा है, और जितना राम मिल गए उतना ही सुख मिला, क्योंकि राम और राम चरण रहे परम सुखदायी सचिदानंद है, तो कोई दुख नहीं। जैसे अक्रूर जी, अक्रूर जी भी जब गए वृंदावन तो कृष्ण के चरणों को देखे पहले जब उसको लेने गए थे, तो कदम गिर रहे हो जब उनके चरण कमल को प्रसन्न हो गए। तो सेवकों ने कहा ठीक है आपने दर्शन कर लिए चरणों के, अब तो बैठ जाइए। तब भरत जी ने कहा कि सिर भर जाऊं उचित समोरा, मैं तो राम का सेवक हूं और राम के चरण जहां पर है वहां मेरा सिर रहना चाहिए, सिर भरत, बैठने की बात छोड़िए, मुझे उल्टा चलना चाहिए शीर्षासन करते हुए, क्योंकि स्वामी के चरण जहाँ है वहां चरण नहीं रखे जाते, वहां क्या रखा जाता है? सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, मेरे लिए तो यह उचित है कि अपने माथे को नीचा करते हुए ऐसे चलूं, लेकिन ये तो संभव नहीं है, ऐसा मैं चल नहीं सकता, ये मेरा दुर्भाग्य है। और आप बैठने की बात है, क्योंकि सबसे सेवक धर्म कठोर, ये जो सेवक धर्म है ना, सेवा बड़ा धर्म कठोर धर्म है। तो हम कृष्ण दास सेवक हैं। अर्जुन जी की बात पर हम विचार करें, या तो हम जो प्रसंग सुना रहे हैं कि शिष्य समर्पण अर्जुन का था, इससे हम गीता के प्रारंभ का यह श्लोक है और गीता के अंतिम में हम माने जाए कि गीता के आधार अर्जुन है। तो अर्जुन ने गीता कृष्ण के मुख से तुलवा ली, उसमें ये श्लोक कारण बन गया कि मैं आपका शिष्य हूं, है ना। और गीता का सार पूरा करते हुए अर्जुन ने फिर एक वाक्य कहा, करिष्ये वचनम तव, मैं आपकी आज्ञा का, और कुछ नहीं देखना है, मैं जीऊं मरूं, मेरे जीए या मरे, कुछ रहे या चले जाए, हमको उनसे मतलब नहीं है, आप ऑर्डर दीजिए और मैं करना। प्रभुपाद जी कहते थे, आई एम फॉलोइंग ब्लाइंडली माय स्पिरिचुअल मास्टर लोटस से, मैं अपने गुरु महाराज के चरण कमलों पर अंधा बन के चलूंगा, ब्लाइंडली गो अबे, मैं कोई आज्ञा देते हैं वैष्णव तो हम विचार करते हैं, मेरे लिए उचित है, नो कोई विचार नहीं, उचित अनुचित वो देखे। ऐसे कहा जाता है ना कि भाई आप देख कर चलिए, सुनकर देखिए, ध्यान रखिए, लेकिन गुरु की आज्ञा के लिए कहा गया है देखिए सुने बिना करिए, क्योंकि बिना आप गुरु की आज्ञा बिना चलोगे तो देखते हुए सुनते हुए भी गिरोगे, और ये ब्लाइंडली चलोगे भी कभी चलोगे, ऐसा है, ये रहस्य है। और ये अर्जुन जी यहाँ पर कह रहे हैं, फिर से श्रेय, जीवों का श्रेय करने के लिए आप प्रकट हुए हैं। तो दो शब्द है, श्रेय और प्रेय, आपने सुना होगा। श्रेय शब्द का अर्थ होता है आत्म कल्याण, तो हम जो है आत्मा और हमारा मंगल हित सदगति, ये हमारा श्रेय है। लेकिन जीव के पास जो एक मन दिया है माया ने, मन और बुद्धि, और उसमें विचार उठते हैं मैं ये करूं वो करूं, भोग के, इंद्रिय तृप्ति के या भक्ति के अलावा जो भी हो, फिर वो राजनीतिक हो, पारिवारिक हो, शारीरिक हो, कुछ भी हो, ये माया है सीधा बात। कृष्ण नहीं है अंदर, कृष्ण जहां कृष्ण नहीं बस हो गया, ओ माया, ओ माया है ही। तो प्रिय, हम लोग अपना श्रेय नहीं देख रहे, प्रिय देख रहे, ये मेरा प्रिय है, ये मुझे प्रिय है, लेकिन उसमें तुम्हारा श्रेय नहीं है, बुद्धि है ना, मन, हम मन क्या करते। तो संसार में 99% लोग अपना प्रिय करने में लगे, अपने को जो प्रिय है उस वही कहते हैं, मन को, शरीर को, इंद्रिय, लेकिन बुद्धि से ये नहीं सोचते कि मैं आत्मा हूं और मेरा श्रेय किसमें है, है ना। तो अर्जुन यहां प्रेय है, और अगर प्रेय की भी व्याख्या की जाए तो जीवों के लिए परम प्रेय केवल भगवान है ना, लेकिन उसका दुर्भाग्य है कि माया के प्रभाव से वो अपना प्रेय कृष्ण को न समझते हुए जड़ व्यक्तियों को, जड़ पदार्थ को, वो है चिन्मय, और उनका प्रेय चिन्मय ही हो सकता है, लेकिन हम चिन्मय आत्माओं के जड़ वस्तु को प्रेय समझते हैं, अर्थात हम अपना श्रेय भूल चुके हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जीवों को परम श्रेय देने के लिए। तो श्रीमद् भागवत का एक प्रसिद्ध श्लोक इन सदन में, गुरु शिष्य सदन में आपने सुना होगा, तस्मात जिज्ञासु श्रेय उत्तम, उसमें एक श्रेय शब्द आया प्रपद्येद, जिज्ञासु श्रेय उत्तम। तो गुरु की शरण में शिष्य क्यों जाता है, मेरा धंधा अच्छा हो जाए, दो तीन बच्चे हैं और एक तो और हो जाए ताकि मैं जीवन में शांति न पाऊं और मेरा ऐसा लाखों का बिजनेस है लेकिन करोड़ हो जाए ताकि मैं और ईर्ष्या करूं और लोग मेरे पर ईर्ष्या करें, हम ये चाहते हैं। ये हमारा श्रेय नहीं है। गुरु के पास शिष्य क्यों जाता है? तमसो मा, इस अज्ञान से मुझे उजाले में ले जाइए, अज्ञान से मुझे ज्ञान में ले जाइए। तमसो मा ज्योतिर्गमयम्, तम अंधकार से मुझे ज्योति में, प्रकाश में ले जाइए। मृत्यु, मैं मृत्यु में हूं, मुझे अमरत्व की ओर ले जाइए। मृत्यु से मुझे अमर की ओर ले जाइए, इसलिए जाते हैं। तो उत्तम श्रेय गुरु की शरण में शिष्य अपना परम श्रेय, हित, मंगल, कल्याण, सदगति किसमें है उसको सुनने के लिए जाता है। लेकिन संसार के लोग साधुओं के पास क्यों जाते हैं? भौतिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए, जो नश्वर है, अर्थात एक दिन छूटेगी और होते हुए भी दुखदायी। ये बुद्धि नहीं है। और बेचारे गुरुओं में भी नहीं है तो वो भी नहीं दे पाते तो क्या करें अभी इसका। इसीलिए कृष्ण ने कहा, गीता भागवत ये सूर्य के समान प्रकट किया। अर्जुन ये कह रहे हैं कि आपने ये धर्म के लक्षण और धर्म का ज्ञान जीवों के परम श्रेय के लिए, जो जीव माया मोह में जीव जुड़ चुके हैं उनके लिए आपने किया। और चैतन्य महाप्रभु तो कहे ना, माया मृगम दयेत सीतमन्वधावत, जैसे हिरण होता है वो भागता है, तो हम लोग भाग रहे हैं माया की ओर, भोग की ओर, और चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद हमारे पीछे भाग रहे, ए रुको, सब रुकिए, कहां भाग रहे हैं आप, इधर इधर मोड़ो, इधर नहीं छोड़ो और भाग। चैतन्य महाप्रभु क्रंथ करुणा देखिए, भाग रहे हैं जीवों के बीच, बेचारे दो लोग छोड़कर नीचे आ रहे हैं, रासलीला बंद करके वेटिंग कर रहे हैं हमारे से, और हम लोग उनको, हम लोग तो नहीं भाग रहे हैं, रुक गए हैं लेकिन जा भी नहीं रहे। ओके आइए, जल्दी जल्दी क्या करना है, जीना है तो आप कर, आप कहते भजन करो, आज करे तो अब कर, है ना, कहते हैं ना, अभी कल करे तो आज करे तो अब, है ना, फल में प्रलय हो जाएगी, फिर करोगे कब? तो कहता है अरे ऐसे तो जल्दी जल्दी क्या करना, आज करे तो काल कर और काल करे तो परसों, जल्दी जल्दी क्या करना है, जीना है बहुत परसों, अरे तो बहुत टाइम है यार भाई, हमको जल्दी क्या है इतना, हमको भाई मरसों का खींचना है, अभी जल्दी क्या है, उठाएंगे मान, करेंगे करेंगे। ये है माया मन, इनको कहते अविद्या। तो ऐसे लोगों के परम श्रेय के लिए आप प्रकट हुए हैं, ये श्लोक पिछला था। तो श्रीधर स्वामी ने, अभी मैं देखा अंदर जाके, तो उसने लिखा तथा शब्द के, कथम शब्द श्लोक में क्या है, तथा शब्द का अर्थ हिंदी में होता है इस प्रकार, या तो और, हम कहते ना ये और, ये और, इसमें इस प्रकार। तो यहां पर बताया गया कि आप जीवों के परम श्रेय के लिए धर्म के अनुसार अवतार लिए हैं, प्रकट हुए हैं, तो तथायं चेन अवतारं, आपका ये जो इस प्रकार आपका अवतार लेना, इस प्रकार आपका स्वभक्त पक्षपातेन लक्ष्यते, ऐसा प्रतीत होता है कि आप अवतार लेकर अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। आप कह रहे हैं कि मैं माया से मोहित जीव के उद्धार के लिए आता हूं, लेकिन आप आते हैं तब रहते हैं अपने भक्तों के साथ, आनंद देते हैं अपने भक्तों को, रक्षा करते हैं आपके भक्तों की। तो ऐसा आप आए हैं सबके लिए, लेकिन आपके कर्म से, आपकी लीला से देखा गया है कि आप भक्त का पक्ष लेते, लग रहा है ना, जैसे अर्जुन का ले रहे हैं, अर्जुन भी बोल रहे हैं इसलिए कि आप तो पृथ्वी के बाहर के उतार के सब जीवों के लिए आए हैं, लेकिन आप सबका रथ तो नहीं चलाया, अर्जुन का ही चलाया, मेरा ही चलाया, और किसी ने दुर्योधन को नहीं चलाया, भीमसेन का भी नहीं चलाया, भीमसेन का थोड़ा एक दिन तो चलाना चाहिए ना, अठारह दिन में सबसे एक घंटा, जैसे हम लोग के पास चार पांच गाड़ी है, कभी ये गाड़ी चलाए भले मेरी, लेकिन हम फिर दूसरे की भी थोड़ी देर चलाए, सांप तो सीधा जल्दी उठ के बस अर्जुन का रत्न किया, बेचारे भीम का नहीं चलाया, किसी का नहीं चला, तब किया कि नहीं? सबके लिए आप महाभारत का युद्ध कर रहे पांडव के लिए एक दिन अर्जुन का चलाना चाहिए, एक दिन युधिष्ठिर का चलाना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं किया आपने? केवल अर्जुन का, अर्जुन कह रहा मेरा केवल, तो ऐसा लग रहा है कि आप पक्ष को लेते हैं, पक्ष पाते हैं ना लक्ष्य से इति, इसीलिए इस आप इस बात का खंडन करने के लिए, या तो आप पक्ष लेते हैं ये अगर कोई कहता है तो उस बात को कैसे पक्ष लेते हैं, पक्ष लेते हुए भी कृष्ण क्यों सही है, इसका उत्तर इस श्लोक में दिया जा रहा है और ये प्रकट बात है। और ऐसे श्लोक बहुत जगह है, अब सातवां स्कंद इसी से प्रारंभ हो। महाराज परीक्षित ने यही पूछा कि कृष्ण सबके लिए प्रकट होते हैं लेकिन देखा गया है कि इंद्र आदि देवताओं की रक्षा करते हैं और असुरों को मारते हैं, तो असुर ऐसा क्यों करते हैं, सबके है ये पूछा परीक्षित जी ने। इसीलिए फिर पूरा प्रहलाद उपाख्यान सुनाया, राष्ट्रीय सभा में यही प्रश्न के उत्तर, क्योंकि कई सुखदेव जी ने कहा कि तुमने जो प्रश्न किया तुम्हारे दादा ने भी यही किया था नारद जी, परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान कृष्ण देवताओं का पक्ष लेते हैं असुरों को मारते हैं, क्योंकि छठे स्कंद में पूरा यही वर्णन आया, समुद्र मंथन में भी वो बेचारे को कुछ नहीं मिला, बलि महाराज को भी वामन अवतार में भी यही हुआ, और सर्यो के बाद में ये जो वृत्रासुर में चित्रकेतु में मरुद्गणों में सब जगह इंद्र का पक्ष, तो इसलिए परीक्षित की पूछ भी है कि आप ऐसा करते हैं भगवान। और कुंती महारानी भी इस बात को उत्तर दी है अपने प्रार्थना में, निणा विडम्बन विषमा मति विडम्बन है न वेद कश्चित भगवत चिकित्सितम सदेह मानस निणा विडम्बन, कुंती महारानी ने ऐसा कहा है कि भगवान कई लोग हैं निणा मनुष्याणाम विडम्बनम, मतलब वो लोग नहीं समझ रहे आपको आपके ऊपर आप क्या है उससे विषमा मति, वो सोचते कि कृष्ण मेरे लिए वैरी है और ये सोचते कृष्ण मेरे लिए मित्र है, आप न तो वैरी है न तो मित्र है, ये मित्रता और ये शत्रुता जीव की ओर से, दुर्योधन आपके शत्रु मान रहा है, आप दुर्योधन के भी मित्र है लेकिन वो नहीं मान रहा, आप ऐसा नहीं कि अर्जुन के मित्र, दुर्योधन के भी कृष्ण मित्र है लेकिन वो सामने से शत्रुता किया हुआ, तब क्या कर, जैसे सूर्य महाराज जी उदाहरण देखे, सूर्य जो है वो तो सबको प्रकाश देता है लेकिन आप घर बना के आप बैकग्राउंड मेरे को प्रकाश, तू बाहर निकल, तुमने रोक दिया प्रकाश, सूर्य तो अब हम लोग ये छाव बना दिए तो यहाँ नीचे खड़ा रहेगा कोई कहेगा हमको सूर्य प्रकाश नहीं दे रहा, हम ले नहीं रहे, उनका तो दोष नहीं, तो कह देते कि सूर्य इनको प्रकाश नहीं देता, हम ऐसी व्यवस्था कर दिए है कि उनका प्रकाश हम बना नहीं रहा, हम चाहते नहीं, तो ऐसे ही भगवान को न चाहकर भगवान से वैर रखने वाले असुर प्रकृति रजस तमास प्रभात जीव दुसंग के प्रभावित जीव कृष्ण को विषम मानते हैं कि नहीं आप हमारे वैरी, और सौभाग्यशाली सत्संगी वैष्णव वो सब कृष्ण को मित्र मानते हैं, कृष्ण तो है भाई यथा माम प्रपद्यन्ते दास्तथे, जो मुझसे जैसा करेगा, ऐसे तो असुरों के भी हित ही करते हैं, सुखदेव जी ने यही उत्तर दिया और नारद जी ने भी यही कहा, क्योंकि शिशुपाल जन्म से गाली देता था फिर भी भगवान ने उनका उद्धार किया, क्योंकि भगवान असुरों का परोक्ष में हित करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई भिखारी आए हम कह रहे हटो तो, लेकिन हम जानते हैं उसके यहाँ रहकर वहां जाकर उसको सौ बोली चावल दे आए उनका घर भर गया, यहाँ से हम कहे भाई भागो, लेकिन वो घर जाके देखता है तो असुरों को भगवान ऐसा करते, यहाँ जगत के सामने उनको मारते हैं पीटते हैं और देते क्या है अपने धाम में ले जाते, महाराज जी ऐसा कहते एक चाटा मार के कोई कह जा मेरे प्लेट में रहो, ऐसा है ना हमको दो तीन चार अभी इतना भाड़ा भरना इतना मकान देना कितना पैसा ना, तो भगवान तो असुरों को मार के कहते जाओ मेरे वैकुंठ में रहो, तो ये अच्छा है कि बुरा है ना, भगवान कह प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष, परोक्ष मतलब देखा ही ना दे, प्रत्यक्ष मतलब आंख अक्षय प्रति आंखों के सामने और अक्षय परोक्ष, अक्षय से परोक्ष परोक्ष में भगवान असुरों का भी हित करते हैं, लेकिन बाह्य दृष्टि से दिखता है कि अब हित नहीं कर रहे, मार रहे, लेकिन ये मारना भी उनके दबाव के अनुसार, क्योंकि वो सोला माला तो नहीं करेगा कभी, भगवान तो कहीं इनका उद्धार फिर ऐसे होगा। लेकिन ये शुद्ध भक्ति नहीं है, नारद जी भागवत ने इनको भक्ति नहीं कहा है, ये द्वेष ही है, लेकिन वो तो कृष्ण का वस्तु शक्ति है कि अग्नि में जैसे बच्चा भी जल जाए, लेकिन ये भक्ति नहीं माना जाता। तो यहाँ पर कुंती महारानी का ये जो वाक्य है कि जीव के प्रति से विषमता है, और इसी बात को जो अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि आप ध्रुवो जिहिर सया, पृथ्वी के भार को उतारने के लिए अवतारा, ते अवतारा ध्रुवो जिहिर सया, आपका अवतार पृथ्वी के भार हरण के लिए हुआ है ना। तो फिर मद शक्ति मात्र न भारम हरती, आप भगवान अर्जुन पूछे, भगवान कह गए रथी कह रहे हो पृथ्वी का भार अवतार करने के लिए मैंने अवतार लिया। फिर अर्जुन प्रश्न करेंगे, हाँ ये बात तो है, लेकिन आपकी शक्ति है कि आप इच्छा मात्र से बाहर हरण कर सकते हैं, अवतार लेने की क्या जरूरत है, तू वो भार जिगिर से आप ये उतारा, पृथ्वी का भार उतारने के लिए आपने अवतार लिया, जैसे गीता में भगवान कहे हैं परित्राणाय विनाशाय संभवामि, तो फिर ये तो इच्छा मात्र नहीं हो भवती, आप तो केवल इच्छा करो और पृथ्वी का भार उतर जाएगा, क्योंकि आप शक्तिमान है, आप इच्छा करें असुर मर जाएंगे, आपकी इच्छा करने से पृथ्वी ही डाउन हो जाएगी, वो हो जाएगी, तो फिर प्रगट होने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप प्रगट हुए क्यों, स्वाना स्वाना अपने, स्वाना अपने अनन्य भावाना वक्ताना, जो मेरे सिवा किसी और को जानते नहीं मानते नहीं, जो मेरे भगवान कहते हैं कि आपके सिवा मेरे सिवा किसी को जानते ही नहीं मानते नहीं, केवल अनन्य, अन्य न इति अनन्य, अन्य और कोई नहीं है जीवन में, अवश्य रक्षित है कृष्ण गोपत्यो वर्णम तथा शरणागति, इतनी शरणागति कृष्ण ही मेरी रक्षा करेंगे, मैं कृष्ण का हूं, मैं कृष्ण मेरे हर कुछ नहीं चलना किसी से कोई, ऐसे जो भक्त है अपने जो उसके प्राण स्वरूप है आत्मा स्वरूप है, और वो क्या कहते हैं अनुध्यान, अनु शब्द का क्या अर्थ होता है, अनु शब्द है, अनु शब्द का एक अर्थ होता है बारंबार, और एक अर्थ होता है अनु शब्द का निरंतरम बारंबार, अनुशब्द का होता है पीछे, अनुज उसके पीछे, अनुगमन पीछे पीछे है ना, तो अनुशब्द के दो अर्थ होते हैं बारंबार या पीछे बाद में, तो यहां अनुशब्द का अर्थ है बारंबार निरंतर ध्यान आए, जो मेरे ही लीलाओं के ध्यान में रहते हैं, ये ध्यानाय शब्द जो है उसको अच्छी तरह समझना होगा भक्तों का, ध्यान मतलब आंख बंद करके बैठ जाना, नाटक नहीं करना है, हमें भक्ति में श्रवण कीर्तन और पवित्रता इतनी लानी है कि भगवान की लीला स्फुरित हो, भगवान का रूप भगवान की लीला हमें चित्त में स्मरण में रहे, उसको ध्यान कहते हैं, केवल आंख बंद के बैठ जाना या कुछ संगीत सुनते रहना या किसी लाइट के ऊपर, ये सब बकवास है, ध्यान नहीं, ऐसा ध्यान किसी ने किया नहीं, ये जो अष्टांग योग पद्धति है जिसका वर्णन गीता में भी है, गीता में पूरा छठे अध्याय का नाम क्या है, ध्यान योग है ना, और इसमें विधि बताई है पूरी पूरी भगवान, पूरा मन के ऊपर है, मन एवं मनुष्य मन के ऊपर नियंत्रण, अर्जुन ने तो रिजेक्ट कर दिया द्वापर में, तो कलयुग वालों को पुत्र सोचना ही नहीं है, और परम तपस्वी अर्जुन जिसकी मैं आगे कुछ विशेषणों की बात कहा संक्षेप में, वो अर्जुन ने इस ध्यान को क्या कर दिया, छोड़ो ये नहीं होगा, और उस समय कौन सा युग था, द्वापर था, अच्छा युग था, अच्छे व्यक्ति थे, और इस समय कलयुग है और भोगी, और लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग दामा कर रहे हैं, ध्यान होता नहीं, ना तो कलयुग का ये धर्म है, कृते तो ज्ञान कैसे युग का है? सतयुग का, कृते ध्यान कहूँ सतयुग, सतयुग में ध्यान करना। अभी कलयुग में ध्यान होगा नहीं, और होगा तो भी जो सुना है जो देखा है उसका होगा, जिसको देखा ही नहीं जिसको सुना ही नहीं उसका ध्यान कैसे होगा? ध्यान मतलब मन में किसी वस्तु का चिंतन करना। ओके, तो मैं आपको प्रश्न करूं कि आप ऐसी वस्तु का चिंतन करिए, मन में ध्यान लगाइए या स्मरण करिए जिसको आपने देखा ना हो या सुना ना हो, क्या मन में लाए? आप मन में वही वस्तु ला सकते हैं, या तो आपने देखी होनी चाहिए या नहीं, तो आप इसके अलावा कैसे लाएंगे बताइए? तो भगवान को ना आपने देखा है, देखा नहीं है क्योंकि हम कौन देख रहे हैं, और ना तो कोई उनके विषय में कीर्तन या प्रवचन सुनते, सीधा ध्यान कैसे करेंगे? उन्होंने संसार को देखा है, संसार के वस्तुओं ने सुना है, आंख बंद करेगा तो वही आएगा उसको, जो वस्तु संभव कैसे हो सकती है? समझ रहे हैं ना आप लोग? समझाना चाहिए, या तो सो जाएगा या वो चिंतन करेगा जो उसको किसी ने कुछ कहा है या बोला है, या उसको आगे कल क्या करना है उसका चिंतन करेगा, यहां तुम्हारे कुछ होगा नहीं। गीता में इस बात को अर्जुन जी जब रिजेक्ट करते हैं तो, लेकिन जहां विद्वान जाने की सोचते भी नहीं मूर्ख वहां पर दौड़ते हैं, ऐसा है। विद्वान लोग जहां जाते हैं सोचते भी नहीं, और ये वहां के लिए दौड़ते क्या, केवल परिश्रम होगा। तो ध्यान शब्द का क्या अर्थ है? ध्यान शब्द का अर्थ है भगवान के रूप गुण लीला, और उसके लिए पहले श्रवण करना पड़ेगा, कीर्तन करना पड़ेगा। जो श्रवण करेंगे कीर्तन करेंगे वही ध्यान में स्थित है, फिर गीता सार्थक होगी। अंत काले चमाने स्मरण मुक्त आकवे, तब स्मरण होगा अंत काल में, नहीं तो अंत काल में क्या होगा? जो पूरा जीवन भर किया है वही तो होगा। तो ध्यान शब्द का अर्थ, जैसे हम उदाहरण दे सकते हैं ध्रुव महाराज को, उन्होंने ध्यान किया था भगवान, उनके ध्यान में भगवान आ गए थे हृदय में, लेकिन साथ साथ में स्थान भी तो वृंदावन था, यमुना स्नान कर, और मंत्र भी था ओम नमः, और ना तो हम मंत्र है ना स्थान है, सीधा ध्यान है। तो होगा नहीं, और किसका ध्यान करना चाहिए ये गुरु बताए थे नारद। आठ श्लोक में भगवान विष्णु के रूप का वर्णन है कि वो क्या पहनते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे सिंगा, ये सब बताया था। और तुम उस रूप का ध्यान करना कि भगवान के माथे पर मोर मुकुट है, उनकी आंखें कमल नयन समान है, उसकी आंखों में थोड़ी लालिमा है, वह एकदम टेढ़ी और काली है, उनके कान सुंदर, उसमें मकराकृत कुंडल है, लाल लाल उनके मधुराती मधुर होठ है, सुंदर उनकी नासिका, उनके गाल इतने चमचम चमकते हैं कि ये जो कानों के कुंडल का रिफ्लेक्शन उस पर जाता है एक सुंदर आईना जैसा, और वो चमकते रहते हैं। उसके नीचे भगवान कौस्तुभ मणि पहने हैं, उसके बाएं वक्ष तल पर भृगु चिन्ह है, उसके रोमावली है पीली जहां पर लक्ष्मी जी विराजती है, और सुंदर मोतियों की मणि की माला है, घनश्याम उनका वर्ण, बाल काले बादल जैसा उनका सुंदर शरीर है, उनके दो भुजाएं है और दोनों भुजाओं में बाजूबंद पहने हैं, और उसके ऊपर पीतांबर पीला कवर का लहरा रहा है, और कमर बेल्ट लगाया हुआ है बड़ा सुंदर भगवान कृष्ण ने, और नीली धोती पहनी है, और पैरों में भी नूपुर आदि है सुंदर, ये सब वर्णन किया। भगवान की नाभि है, बहुत सुंदर नाभि है। ध्रुव महाराज ने पूछा कैसी नाभि है, तो नारद जी ने कहा कि तुम यमुना में गए होंगे तो वहां पर भ्रमर होती है, भ्रमर होते हैं कहते हैं भ्रमर, हाँ भ्रमर, तो कैसा होता है गोल 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 ऐसे अंदर जाता है ना, तो कृष्ण की नाभि ऐसी है, उनकी उनके गले में तीन रेखाएं है शंख जैसी, और सुंदर हस्त्र है सुंदर, और ये लोग क्या ध्यान करने को कहते, वो है ही नहीं, उनके हाथ ही नहीं है, पैर ही नहीं है, कुछ नहीं है, उसका ध्यान करो, कुछ नहीं तो ध्यान क्या करना है? नारद जी ने सुंदर बताया कि किसका ध्यान करना है, और ये लोग ध्येय ध्यान वो करना है, लेकिन ध्यान में जो वस्तु है ध्येय जिसका ध्यान उसका तो वर्णन ही नहीं, उनके लिए तो कहते भगवान है ही नहीं, निराकार।
ये मेल नहीं है, फिर भी करोड़ों मूर्ख लगे और ऐसा करते करते वो लोग क्या बात में कहते हैं, हम ही भगवान, अब भगवान बन सकते हो, बन सकते आप तो हो ही। एक बड़े बड़े आचार्य माने जाते हैं आज के, करोड़ लोग उनके पीछे, उनका एक बार टीवी में सुन रहा था संस्कार में, तो उनको पूछा गया गुरुजी, गुरुजी कहते हैं गुरुजी क्या भगवान है, सीधा पूछा एक चेला ने, क्या आप
भगवान है?
उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, क्या अभी भी आपको शंका है? उन्होंने क्या कहा, अभी भी आपको शक है? तो मतलब वो भगवान है मैं हूँ उसका कहने का था, आप पूछ रहे हो अभी भी कि मैं भगवान, आप भी भगवान बन सकते हो, अब बताइए। ક્યારેક ક્યારેક જેને બાજી થઈ જતી હોય, ક્યારેક ક્યારેક ગાડા થઈ જતા હોય, ભગવાન ગાડા બાજી ભગવાન ને કહે, ગુરુજી ગુરુજી કો ભી બાજી હો જાતા હૈ, કભી કભી ગુરુજી કો ભી હલ્ડો લેના પડતા હૈ, હવા બાહર હાજ મોલા, ઓર ગુરુજી ભગવાન હો ગયે, ઓર ગુરુજી કભી કભી છેલે કે દ્વારા જ્યાદા ખા લેતે હૈ તો लूज मौसम भी हो जाता है, और ये भगवान है और ये से मूर्ख चेले है, वो कहना चाहिए कि हमारा गुरु भगवान है, उसको जाहरा नहीं होना चाहिए कभी, तो भगवान इतना तो रोक के बताओ पहले, भगवान की छोड़ो, पृथ्वी और सूर्य को रोकने की बात छोड़ो, कृष्ण ने सूर्य को रोका था, भूमंडल को अपने मुख में दिख रहे वो बात छोड़ो, सुख तुम केवल तुम्हारा शक्ति रोक के दिखाओ आदा नहीं, बाकी तुम भगवान बनते हो है ना, लेकिन आज सत्य बोलने वाला कोई समझाने वाला नहीं है, दो मिनट बाथरूम की कतार में हो जाए तो धोती पैंट अलग भी कर जाते हैं, भगवान बनते हैं, ज्ञान ही है। तो ध्यान, मैं कहा कृष्ण का ध्यान करा रहा था आपको, ध्यान में लगा दिया, लेकिन सत्य है, सत्य को समझने के लिए असत्य को भी सुनना पड़ेगा, समझ रहे ना, भगवान के धाम को समझने के लिए इस धाम को भी सुनना, इस जगत को भी देखना पड़ेगा कि ये कैसे है, रोक दो वस्तु के बाद भी पता चलता है ना ये राइट ऐसे है। अनुध्यान, जो मेरे ध्यान में आपकी भक्ति में लगे रहते हैं, सीधा अर्थ है आपके नाम रूप गुण लीला कीर्तन में स्मरण में लगे रहते हैं और आपके सेवा किसी दूसरे किसी को नहीं जानते मानते हैं, ऐसे अपने भक्तों के लिए आप होता है, नहीं तो वो बाहर ईर्ष्या वो तो बैठे बैठे कर सकते हैं, वैकुंठ में बैठे बैठे अपनी सृष्टि अपनी दृष्टि से अपनी इच्छा मात्र से असुरों को मार सकते हैं, उसके लिए अवतार लेने की जरूरत नहीं, आप अवतार लेते हैं आप अपने भक्तों के लिए, अपने जो आपके अपने हैं, जो आपके सिवा किसी को नहीं जानते और जो आपकी भक्ति में ली, उसके लिए आप अवतार लेते हैं, अर्जुन का। और श्री प्रभुपाद जी ने गीता का जो श्लोक है उसी का एक भावार्थ है अपने तात्पर्य में लिखा है कि भगवान ने कहा है, कौन से जैन कहा है, समोहम सर्वभूतेषु नमे देशोस्ति न च प्रियस्ति, भगवान कहते हैं कि अर्जुन में सबके लिए समान हूं, न तो मेरा कोई वैरी है न कोई मेरा प्रिय, मैं सबके लिए इक्वल समान, लेकिन जो मुझे अपना मानते हैं मई से, जो मुझे अपना मानते देशु से आते हम उनके लिए मैं विशेष, सब मेरे हैं लेकिन जो मुझे अपना मानते हैं मैं भी उसे अपना मानता हूं, बस इतना इतना भगवान का स्वभाव, सब है मेरे लेकिन जो मुझे मेरा मानते हैं, मुझको मेरा मानते हैं, मुझे प्रेम करते हैं तो उसे मैं भी अपना मानता हूं, उसे प्रेम करता हूं, बाकी तो सब समान। तो कई बार संसारी लोग अज्ञानी लोग इस तरह पूछते रहते हैं कि भगवान इसको मारते हैं इसको बचाते हैं तो भगवान सम नहीं है विषम है, लेकिन विषमता कुंती महारानी कहते हैं जीव की ओर से, जीव उसको दुष्मता, और भगवान कहते हैं कि अगर आप मानते हो कि मैं सबके लिए सम, मैं सबके लिए समान हूं लेकिन मेरा है तो मैं उसका हूं बस, और उसके लिए उसको मारूंगा, आप अभी जो जो विषम मानो तो विषम मानो, उनसे मतलब नहीं,
लेकिन मेरे भक्तों की रक्षा करूंगा तो करूंगा। फिर ये लोग चिल्लाते रहेंगे आप पक्ष पर, ये हूँ ये सुले भगवान फिर स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। गीता में ये कह रहे कि यदि मैं जो मेरे है तो हूँ है ना सुले, बाकी तू ही मारो जो तू मैंने मारा नहीं मानता ना संसारियों ने मारा माने जो मैंने मारा माने तो ए नो ऑब्जेक्शन नो वकील नो डॉक्टर नो केस कुछ नहीं। मेरे भक्त का मैं हूँ, हम भक्तन के भक्त हमारे। और क्या कहा था भगवान विष्णु ने वैकुंठ में दुर्वासा को, अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों का हूं उतना ही नहीं मैं भक्तों का भक्त हूं। मेरे भगत से बोले हो मैं उनके पराधीन हूं, आखिर पूरी दुनिया मेरे अधीन है और मैं अपने भक्तों के अधीन नहीं। स्वतंत्र ही द्विज है, द्विज हे ब्राह्मण बीज, मैं भक्तों के पराधीन तो हूं ही लेकिन स्वतंत्र नहीं हूं। अब उनके लिए वेद में क्या लिखा है, आप स्वतंत्र स्वराज हो, और वो कह भगवान के दिल में स्वतंत्र नहीं हूं, मैं तो मेरे भगत का भगत हूं राज, वो जो बोले वो करता हूं। अर्जुन कहता कि चलाओ रथ, ओके जाओ दूध बन के, ओके। माता यशोदा कहती, नंदवाला कहते थे लाओ मेरे चप्पल, तो भगवान कृष्ण ढाई साल के थे उठा नहीं सकते थे, तो दोनों चप्पलों को सर पे लेके जाते थे, तो बीच में आता है ना दो जरा उम्र फूके तो उसको लांग नहीं सकते है भगवान, तो अभी चप्पल नीचे रखेंगे फिर जाएंगे तो चप्पल इस तरफ पड़ा है तो फिर ले नहीं सकते, तो चप्पल लेते हुए जाएंगे तो गिरते लगता है मुका गए ना। अभी जो भगवान अपने एक पैर में पूरा ब्रह्मांड नाप सकते हैं वो नंद बाबा का उखल नहीं नाप सकते हैं। ये चप्पल नहीं छोड़ना है क्योंकि मेरे पिता का है, चप्पल लेके जाते हैं। पूरे विश्व ब्रह्मांड के अधिपति भक्तों के भक्ति के वश है, पूरे बंदार को काट सकते हैं जिनकी इच्छा शक्ति से, सुर नर मुनि सब जो नाग किन्नर गंधर्व सबको कर्म की डोरी से बांधे हैं, पास जसीमती उसी को माता यशोदा ने हर्ष से बांध दिया, चलो छूट नहीं सकते प्रेम की रज्जु से बांध दिया। और वहां पर नंद बाबा तो चप्पल उठा रहे हैं, और उसके लिए जय जय जी ने क्या लिखा है, जिसने चप्पल उठाया उसके लिए वो कभी रामन बने थे, तब कैसे लिखा है जय जय जी ने, चलो श्री क्रमणे बलि रघुभूत वामन पदन खनीर जनित जन पावन केशव धीता वामन रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश। छल सी विक्रमण अद्भुत विक्रम जिनका था कि एक पैर में ब्रह्मांड के कवर को फाड़ दिया और गंगा पद नख नीर उनके चरण कमल के नख से नीर बहता हुआ जो नीर जगत जन पावन पूरे त्रिभुवन को पालन करता, जिनके चरणों से गंगा निकलती है उस गंगा जिनको शिव सर पर धारण करते हैं, और वे भगवान नंद बाबा के पादुका चरण सिद्ध पर रखते हैं, आता हूँ पिताजी अभी आता हूँ, देखते थे कि आ रहा है। तो भक्ता के भक्तों के लिए मेरा जीवन है, भक्त ही मेरे प्राण है, ऐसा भगवान ने बहुत जगह पर कहा है। तो भक्ति वशो ही पुरुष भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति की बहुत महिमा है और भक्ति भगवान के बहुत प्रिय है, और जो भक्ति करता है वो भक्त है। तो अर्जुन यहां पर कह रहे हैं कि तथायम अवतराणा, आपका ये अवतार ये ना अवतारस्ते भुवो भार जिहीर्षया, भुवो के भार को स्वाना चनन्य भाराना ध्यान अनुध्यान अनुध्यान है क्या सकृत असकृत लिखा है च और असकृत चा है ना च में और चा च प्लस और चा असकृत मतलब पूर्ण सकृत मतलब थोड़ा असकृत मतलब पूर्ण तो लाभ पहुंचाने के लिए आप पूर्ण रूप से प्रकट होते हैं। प्रभुपाद जी की अंतिम बात की चर्चा हम करें कि ये जो भौतिक संबंध है मित्र पुत्र पत्नी आदि भगवान तो सबके पिता है लेकिन उनके साथ जो संबंध है वो आध्यात्मिक है हमारी तरह भौतिक नहीं है उन पार्षदों के लेकिन पत्र से भगवान के ना तो कोई पुत्र है ना कोई पिता है ना कोई माता तुल्य है वो स्वराग है वो ईश्वर है लेकिन लीला करते हैं लीला में पुत्र भी बनते हैं पिता भी बनते हैं नहीं तो वो है सबके पिता। तो जैसा कि ऊपर कहा गया कि भगवान प्रकृति से परे हैं अतएव भक्ति में उनके इष्ट तथा संबंध मित्र ऐसी कोई संसारिक रिश्तेदारी भगवान के साथ नहीं चलती उनके भक्त उनके मित्र उनके परिजन है हम लोग कहेंगे कि है तो वो उनकी लीला है लेकिन भगवान पिता महर्षि जगत बाकी पूरे जगत के कलो माता जी पूछ रही थी कि भगवान गीता में कहते हैं कि भगवान सारे जगत के पिता है तो फिर हमारे पिता है तो हम उनकी उनके पुत्र कैसे हो गए या हम उनकी पत्नी कैसे बन सकते हैं। तो ये जो पिता है वो वैभव ऐश्वर्य है उनका तत्व है और हम उनकी पत्नी को वो सब भक्ति है भाव है लीला है दोनों सत्य ऐसा है ना। वसुदेव जी कृष्ण के पिता है नारद जी के पास वही वसुदेव जी कहते कि मैं कैसे भगवान नारायण को पा जाऊं वो तो सब नारायण सबके पता नहीं नारायण का ये भी नारायण का बच्चा करते थे वो भी भगवान की पूजा करते थे नंद बाबा भी करते थे नारायण की पूजा लेकिन ये साक्षात नारायण नहीं बेचारे जान ये क्या है भक्ति है वात्सल्य भक्त योग माया ने उसके ऊपर आवरण कर दिया ताकि भगवान लीला वही पर लीला सुख ले सके। तो ऐसे पता होना चाहिए हम भक्तों को। तो अर्जुन जी का चार श्लोक है स्तुति का उसमें ये अंतिम श्लोक है उसके बाद सुद गोस्वामी पुनः प्रसन्न कहेंगे कि अर्जुन ने इस प्रकार स्तुति किया फिर भगवान क्या बोले भगवान भी फिर कुछ कहेंगे अनुमोदन करें तो प्रसंग चलता रहेगा। तो इसमें एक शब्द है जैसे तो तीन शब्द में ध्यान के ऊपर थोड़ा व्याख्या दिया अनन्य के ऊपर तो सिंपल बताया कि अन्य न इति लेकिन अनन्य के ऊपर चक्रधिपाय गीता में जो श्लोक है अनन्य चिंतयन्तो मां उसको पढ़िए उसने बताया है कि अनन्य मतलब क्या अनन्य मतलब अन्य कोई देवता नहीं अन्य कोई विधि नहीं भक्ति के अलावा अन्य कोई कामना नहीं ऐसे अनन्य के बहुत स्टेप है और एक शब्द ध्यान ध्यान के ऊपर तो सरल है और अवतार अवतार किसको कहते हैं कितने प्रकार के अवतार है उसमें कौन कौन आते हैं शक्त्यावेश उसमें कौन कौन आता है पता होना चाहिए नारद जी पुरुषु व्यास इसमें भक्ति शक्ति डाला उसमें वेद शक्ति क्या क्या डाला फिर पुरुष अवतार क्या करते हैं गुण अवतार उसका क्या चैतन्य चरितामृत विस्तार से है। तो अवतार शब्द अपने आप में अवतार किसको कहते हैं कितने प्रकार के अवतार होते हैं वो कौन कौन है उनके क्या कार्य है पूरा एक होना चाहिए भक्तों को। और अनन्य भाव अनन्यता का क्या अर्थ होता है कि अन्य कोई नहीं हमारे एक नव योगेंद्र महाराज कहते हैं कि भक्त का अनन्य भक्त तो अनन्य मतलब अन्य कोई नहीं किसी को नहीं मानता था दुर्गा जी को नहीं मानता इसको नहीं मानता किसी को नहीं मानता। एक दिन जा रहा तो बोले अरे तो मैं अनन्य भक्त उसने कहा तुम अनन्य है तो मैं अनन्य हूँ तो बोले अनन्य को मैं जानता हूँ कि कृष्ण के अलावा किसी को न मानू तो अनन्य का क्या अर्थ होता है अनन्य मतलब अनन्य क्या होता है तो कि अनन्य ये होता है कि अनन्य वाला तो ये कृष्ण को मानता है उसी को लेकिन वो ये भी जानता है कि ये है मानता नहीं है लेकिन मैं तो जानता ही नहीं हूँ कि वो कोई है हम तो कृष्ण ही है अनन्य वाला तो ये जानता है क्योंकि ये है तब ये नहीं है समझ रहा है कम तो ये है लेकिन हम नहीं मानते अन्य न लेकिन हमारे तो सब ये है ये न अनन्य हो बना तो इसकी बड़ी हिस्सा एक कथा है वैदिक कथा है दोनों के चर्चा तो अनन्य होता है एक अनन्य होता है एक अनन्य होता है तो अनन्य भी एक शब्द है अपने आप में स्वानाम भूलो पृथ्वी के बारे में बताइए भार पृथ्वी का भार क्या है कोई व्याख्या करे पृथ्वी का भार हटाना है, चलो तो ये दो मंजिले का मकान है उसको एक माला बोलो, कम से कम पृथ्वी का भार कम हो जाएगा। ऐसे भार क्यों, पृथ्वी का भार क्या है, ये पाप और ये असत्य, ये सब नशा आदि दोष, कृष्ण की भक्ति के शून्य भोग, ये सब ये भार। नहीं तो हम भार समझेंगे तो यहाँ से उठा के कहीं रहेगा तो इसी और पृथ्वी में भार लगता भी नहीं। पृथ्वी को भार, बच्चे होते हैं माता पिता के भार कब बनते हैं, उनसे विपरीत चले ये भार, नहीं तो उनको कोई भार थोड़ी है। भार शब्द परिस्थिति में लेना पड़ेगा, कई कई जगह भार नहीं लगता। चकली बात में एक बड़ा सुंदर क्या है, चोर होता है चोर, उसको जितना ज्यादा भार है उतना मजा आता है, ज्यादा भार होना है इसको भार नहीं लगता, उसको वो तो चाहता है कि मेरा भार और बढ़े। किसी घर में गया हो तो बाहर निकलते भार बढ़ाना चाहता है ना, कई बार लोग के कारण भार बढ़ने के कारण भागने से कम मर जाता है, उसको भार लगता ही तो अलग भार अलग अलग जगह लगता नहीं। माता के गोद में पुत्र सोया है उसको कभी भार लगता है, नहीं लगता उसको भार, क्योंकि वो उसमें स्थिति नहीं है, इसका मन कहीं और है। तो भार मन में होता है, एक तो शरीर में भार होता है लेकिन एक मन में भार होता है। तो भार भी अपने आप में एक शब्द है। जिहिर क्रिया का क्या अर्थ बताया गया, तो वो भार जिहिर सया दूर करना, हटा देना, हिर सया मतलब हटा देना। तो पृथ्वी का भार हटाने के लिए ते अवतार, आपका अवतार, और दूसरा आपका अवतार क्यों हुआ है, अनन्य स्वानाम ध्यानाम, उसका पूर्ण रूप से रक्षण करने के लिए। तो इसके लिए कुंती महारानी ने कहा है ना, भवेस्मिन कृष्ण मानो नाम अविद्याम काम कर्म भी, प्रभु आपका अवतार हुआ है, कीर्ति दाहू कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि तुमने लोग की कीर्ति बढ़ाने के लिए अवतार लिया, कुछ लोग कहते बाहर उतारने के लिए अवतार लिया, लेकिन आपने तो संसार में भव अस्मिन इस भव सागर में क्लिश से माना ना, अनेक प्रकार के क्लेश जो भोग रहे हैं ऐसे जीवों के लिए अवतार लिया। क्योंकि अवतार में क्या लीला करेंगे, तो श्रवणम कीर्तनम रहानी करिष्यम इति, तो ये है अवतार के, भगवान के अवतार का रहस्य भी है इसमें। तो भागवत का श्लोक है, साक्षात भगवान है, भाव से पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, इससे परे हमारा और कोई धर्म कर्तव्य नहीं है और इससे परे कोई साधना भी नहीं है। और ये हमको मिल रहा है, ये कृष्ण की कृपा है, अब हमें इसमें रुचि बढ़ाना, आसक्ति बढ़ाना है और ये अच्छी तरह से हमको मिले, इसके लिए हमें शुद्ध बनना है, मन से तन से सेवा करनी है, शुद्ध कपट भाव छोड़कर त्याग कर एकदम, तब ये दिव्य ज्ञान हृदय में अच्छी तरह से आता है। नहीं तो पढ़ते सुनते हुए भी हम समझ नहीं पाएंगे, जितने हम अशुद्ध रहेंगे, जितने हम कपटी रहेंगे, उतना ही भगवान और भगवान का ज्ञान हमसे दूर रहेगा, भले हम उनके संपर्क में आते हुए भी, ये जो इसमें करंट है ना पकड़ो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये वायर ना हो तो नहीं पकड़ सकता। तो उसी तरह ये आवरण हमारे भगवान है, परिग्रंथ के रूप में, विग्रह के रूप में, नाम के रूप में है, लेकिन हम हमारे आवरण अहंकार का कवर तोड़ेंगे नहीं तो टच ही नहीं हो रहा, करंट ही नहीं आने देगा। तो कनेक्शन बड़ा मजबूत होना, ढीला कनेक्शन किसी का आता है कभी कभी करता है ऐसे भी, कनेक्शन भी मजबूत होना चाहिए और कोई आवरण नहीं होना चाहिए, इमी तुरंत उसका तो कभी करंट में आ जाता है एक दो दिन बाद में फिर कहीं गायब हो गया, फिर ऐसे होता है। कभी कहते ना माइक में ढील हुए काम करो तो बोले और जाके गड्डी जाए था ढील, कभी लगन थोड़ा सीजन है तो ढीला हो गया, फिर तो फिर करेगा। हाँ गांठ लग रही है अभी सबको लगे, क्या कौन सी गांठ कहते थोड़ा चल रही, ओके गांठ, तो हमारा भी एक गांठ लगा है कृष्ण के साथ, गांठ लगा है अपने पर छेड़ा छेड़ी बांध जाने से कृष्ण है, छेड़ा छेड़ी जाने कृष्ण के साथ क्या, नहीं तो ये ग्रंथ ही छूटेगी नहीं, तुम सा मिथमी बावे तक है ना, ने कहा एक ग्रंथ ही है। धन्यवाद आप सभी दोस्तों का, अच्छा मंदिर चला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। सबको सेवा में लगाना चाहिए, सेवा करते हुए सेवा में लगाना चाहिए। किसी का कोई प्रश्न है?
मुझे कोई प्रश्न न तो कौन है का અને કીધું ને કે આપણે કીધું ને કે ભગવાન ના ભક્તો ના છે, બરોબર? એમ એ હકીકત માં આપણે જોયું કે આપણો દ્રષ્ટિકોણ છે એવો કે ભગવાન ભક્તો ના છે, હકીકત તો એ અસુરો ના છે.
હા છે ને, એ તો કીધું બધા ના છે.
આપડે કેમ છોકરાને, આપડા છોકરાને ક્યારેક હાથ પકડીને એને પ્રેમ કરીને બીજા છોકરાને થપાટ મારીને ઓલો કરીએ, પ્રેમ કરીએ?
હા બસ એવું જ છે. ખરાબ કામ કરતો હોય તો બાપા ને તો પ્રેમ જ છે, મારી એને એમ થાય કે એમ બાજુવાળા જોયા કઈ મારે, પણ બાપા ને ઉપર કઈ તો પ્રેમ જ છે, પ્રેમ નું પ્રતિક છે. પણ એ બધું એ ચર્ચા તો થઈ સારી છે, ભગવાન મારે તો એ ધામ આપે છે, બાકી લોકો અસર જ મારે. તો શુકદેવ ગોસ્વામી એ જ ઉત્તર આપ્યો મહારાજ પરિષદે પૂછ્યું હતું કે ભગવાન કેમ એવું દેવતા ને બધાના છે, પણ એનો ઉદ્ધાર આ રીતે કરે છે. કારણ કે એ લોકો એ રીતના ગીતામાં એ કીધું ભગવાન બધાનો, પણ જે લોકો ભક્ત મારી ભક્તિ કરે છે એને હું વૈશ થઈ જાઉં, અને એનો અર્થ એવું છું ઓલા મેળવે, પણ એનો ઉદ્ધાર આ રીતે થાય. શું કરે, ભગવાન તો બધાના છે, બધાના હિત કરતા, પણ આપણું વધારે કીધું છે. કારણ કે ભગવાનનું પરમ હિત મંગલ ત્યારે જ દેખાય, સંતો આવું તારતમ્ય કાઢે કે એના ભક્તમાં સંગ આપે એવી સુવિધા આપે. સ્વાના પોતાના જેને એને ભક્તને એને બધા એના કેમ રખડે છે, ભગવાનની કૃપા છે કે જીવન આપ્યું, ભલા આપ્યું, બધું આપ્યું, કૃપા છે એના જ થઈ, પરમ કૃપા આપણી પર એ છે એના ભક્તની કે આપણને ભક્તિ આપી. એક તો સારું કામ કરે છે, કોઈ નડતા નથી પછી વાત બ્રહ્મ કુમાર કુમારી બધે એક પેલા તો બ્રહ્મ 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 મીન્સ શું એ પ્રશ્ન થાય. બ્રહ્મ બહુ બૃહદ શબ્દ છે, અઢી અક્ષર નો. બ્રહ્મ એટલે ભગવાન થાય, બ્રહ્મ એટલે બ્રહ્મા થાય, બ્રહ્મ એટલે બ્રાહ્મણ થાય, બ્રહ્મ એટલે વેદ થાય, બ્રહ્મ એટલે ભગવાનના શરીરમાંથી નીકળતો પ્રકાશ. બ્રહ્મના બૃહદ સ્થાને સ્થાને અલગ અલગ થાય. બ્રહ્મ એટલે આત્મા થાય, બ્રહ્મભૂત. બ્રહ્મ એટલે ભગવાન પરમાત્મા થાય, પરબ્રહ્મ લાગે. તો બ્રહ્મ જે છે અલગ અલગ ફેઝથી અલગ અલગ અર્થ થાય એના, પણ સિમ્પલ જે બેઝિક અર્થ જેને કહેવાય મુખ્ય અર્થ, તો બ્રહ્મ બ્રહ્મ સંબોધિત કરે છે ભગવાન શ્રી વિષ્ણુ કૃષ્ણના શરીરમાંથી નીકળતા પ્રકાશ, જે રીતે સૂર્યના પ્રકાશ, સૂર્ય પ્રકાશ જે ઉદાહરણ પ્રભુ ભાષા. તો કોઈ વ્યક્તિ જે અજ્ઞાનમાં છે એ સૂર્યના પ્રકાશનું ધ્યાન કરે છે, સૂર્યનો ગોળા વિશે નથી ખબર, સૂર્ય દેવતા વિશે પણ નથી ખબર, પણ પ્રકાશ એ મિથ્યાગર નથી છે, પણ એ એટલામાં જ રહી જાય, સૂર્ય પ્રકાશને જ હું માનું, સૂર્ય ગોળાન ન માનું, સૂર્ય નારાયણ ન માનું, તો હું મૂર્ખ અધૂરો છું ને, કમ્પ્લીટ નથી, રોંગ નથી પણ પૂરો નથી. સૂર્ય પ્રકાશ ખોટો તો નથી, તે પ્રકાશ તો છે પણ અધૂરો છે ને, અનકમ્પ્લીટ. તો જે લોકો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું સચ્ચિદાનંદ ચતુર્ભુજ નારાયણ શંખ ચક્ર એના ધ્યાન સુધી પહોંચે તો બેસ્ટ, પણ ન્યા વગર નથી પહોંચતા. એ લોકો એમાંથી નીકળતી જ્યોતિ પ્રકાશ બ્રહ્મ બ્રહ્મ એ લોકો જે ધ્યાન કરે છે પ્રકાશનું ધ્યાન કરે છે કે કોઈ જ્યોતિ અમને દેખાય, અને બ્રહ્મ ભગવાનના શરીરમાંથી નીકળતી જ્યોતિ પણ ભગવાન જેટલું સુખ આનંદ ધામ ગણાય છે, એ પણ એક જગ્યા છે, એવી વસ્તુ છે જ્યાં ભૌતિક સુખ નથી પણ એ ભયજનક, જ્યાંથી પતન થાય છે, પતનથી ભાગવત કહે છે. ભગવાનના ધામમાં જાય ભગવાનને પામે તો પતન નથી, પણ આ જે લોક છે એ વચ્ચે ને એ બધી પતન પણ છે એવું ભાગવતમ ના આધારે. તો તમે પૂછતા હોય કે જે લોકો ધ્યાન કરે છે એની શું ગતિ થાય, તો એ લોકો રોંગ તો નથી, ઠેઠ નથી. તો આજ નહીં તો કાલ એની ચેતના શુદ્ધ થાય, પાપ કર્મ ઓછા થાય, કોઈ સંતની કૃપા થાય, તો એ રાઈટ ડિસિઝન ઉપર આવશે તરત. કારણ કે સૂર્ય ને માતા ભગવાન સમજાવવા પ્રકાશ કાય નીકળો, થોડોક આગળ જોતો તો એ જોવે પ્રકાશ દેખાય કે નહીં, કોને ને મળવા જોઈએ સાચા વ્યક્તિ સંત ગુરુજી એને દેખાડે. કારણ કે છે તો કોઈ કેમ તું બ્રહ્મ જ્યોતિ ધ્યાન કરો, બ્રહ્મ જ્યોતિ આવી ગયા છે, કોને ઉત્પન્ન કરી, ક્યાં છે, એનો પ્રશ્ન થાય છે ને. પણ વેદોમાં ઋષિઓમાં ઉપનિષદોમાં છે ભગવાન આગળ, પણ એ જ્ઞાન દેવાવાળા સદગુરુ એને મળે અને એની વાતમાં એને વિશ્વાસ આવે ને માને તો પામશે, નહીં તો હું તારે નહીં તો એને ત્યાં સુધી સુખ મળે છે પણ હોળી ભાવ સાગરમાં પડશે. કારણ કે મુક્ત તો નહીં જ થાય, નહીં આગળ નહીં એનો પડશે, બે બાજુ એક થાય. તો એની ગતિનું પૂર્ણતા પામે તો સિદ્ધ થાય, પણ પૂર્ણતા નહીં પામે તો એટલે હાવ દુર્ગતિ નહીં થાય. પણ એ સંસાર બંધન તો રહેશે, એમાં ફરતા ફરતા કઈક સંતો ની વૈષ્ણવ ની કૃપા થાય તો આગળ ગાડી હાલ. આપણે તો માર્કેટમાં ચાલુ કર્યું છે પણ એમાં કોઈ કાંઠો મળી જાય પાર્ટી તો હાલો, ન તો થતા થતા ન મળે એ બંધ થાય એમ જેવું છે. એમ થાય બીજું શું થાય, આધાર રાખે છે એની ઉપર. પણ એક વાત છે કે સત્વગુણ હોય એનામાં, એને જો ક્રોધ નથી એ લોકોમાં, એને એવું નથી ક્રોધ કોઈને બાજુ એવું કઈ નથી, શાંતિ તો લેવી છે ને. એનો ભાવ આમ કે એક સ્ટેપ કહે ને સત્વગુણ ના લક્ષણો છે, ભલે પૂર્ણ ભક્તિ નથી પણ એનું લેવલ કયો રોંગ નથી, સમજી ગઈ ને. અધૂરું છે, આગળ વધશે અને આગળ વધુ માહે જવું એની ઉપર છે, અને એના સંઘ ઉપર છે, એના ગુરુ ઉપર છે, એના શાસ્ત્ર ઉપર છે. એનું કઈ રિઝલ્ટ નો કહીએ કે આ ફરતા ક્યારે ક્યાં જાય, પણ ભક્તિ કરતા એનો રિઝલ્ટ છે. કારણ કે એ ભગવાન ના આશ્રયમાં, માછલી કેમ જળ ના આશ્રયમાં, જળ ના આશ્રયમાં એટલે ગમે એટલું પાણીનું પૂર આવે તો એ માછલી થોડી તૂટી જાય, એને કઈ થાય એમ. ભક્તો ભગવાન ના આશ્રયમાં, ભક્તો બિંદા આશ્રય છે, નાના ખોળામાં બાળક કેમ બિંદા. ભક્તિ સૌભાગી ગાયન આપે છે, તમને સાંભળ્યું છે બિગાડીના બચ્ચાનું ને વાંદરીના બચ્ચાનું સાંભળ્યું. વાંદરા તમે જોયા છે વૃંદાવનમાં, વાંદરીના છોકરા એના બાળકો વાંદરા વાંદરીને પકડ્યા ને એને પકડ્યા હોય, ઉપરથી પકડે ને વાંદરી દોડતી હોય દિવાલ લખીને ઝાડવે ઓલું એને ચૂપકેલું હોય, કોણ ચૂપકેલું હોય, બાળક ચૂપક્યું છે એ ગમે ત્યારે ક્યારેક છૂટી જાય એવી જોઈ જાય આ પડે. તો બિલાડી એના બચ્ચા મોઢામ પકડે ખબર લઈ જાય ગામડા ભગવાનની સંરક્ષણમાં છે, ઓલા સ્વતંત્ર છે અને માયમાં કોઈ આધાર નથી. ભગવાન પરમાત્મા રૂપનો બ્રહ્મનો ભેદ એ આધાર નથી, બાકી આપણે રક્ષણ પૂરેપૂરું પ્રોટેક્શન છે નાના બચ્ચા ઉપર. એવું ઉદાહરણ સ્વરૂપે આપે છે કે જે ભગવાનના આશ્રયમાં છે અને શરણાગત છે. હજારો ઉદાહરણ છે અને ભગવાનને હજાર જગ્યાએ વેદોમાં ગીતામાં ભાગવતમાં વચન હોય પાસે હું રક્ષા કરું છું, મારી સરસ ટેન્શન નથી. અને ગીતામાં ભગવાને કીધું કે ભક્તિના માર્ગ સિવાય કોઈ બીજે જાય તો ક્લેશોથી તરસ્તા અવ્યક્ત ચેતસા, એ અવ્યક્ત જે દેખાતો નથી હતા બ્રહ્મમાં એમાં જે લોકોની ચેતના લાગી છે એને દુઃખ બહુ મળશે, ક્લેશ બહુ, એને બેઠું રહેવું પડશે. અને એમાં કોઈ જે હલાવી દીધા તો પાછા બોલે આયા તો કીર્તન કરતા કરતા ઓકે લાવો પ્રસાદ સાધના આનંદ આવે અને જેટલું કહેવું એટલું પૂર્ણ. અને બોલું તો આખો દી બેઠો પછી હલાવી દીધા થોડાક તો આખો દીનું ખ્યાલ વળી પાકર આ એવું નથી, જેટલું કહેવું એટલું પણ આમ કર્યા તો અર્જ થઈ ગયા સાંભળ્યું તો શું કીર્તન કર્યા પૂર્ણ એટલું અનકમ્પ્લીટ છે, પૂર્ણ થાય ત્યારે પૂરું ભાવ મળે. અને આ તો ભક્તિ તો અજરમ ચાલુ જ થઈ ગયું, એટલા માટે ભક્તિનો માર્ગ ઓમ શિવ વાળા બ્રહ્મા શિવ વાળા શિવ જે મંત્રો છે એ વાસ્તવમાં નિરાકારને સૂચિત કરે છે અને ભગવાન એનાથી પ્રસન્ન રહે છે. એ લોકો ક્લેશને વધારે પામશે દુઃખ, પણ જો કોઈ સંત બાકી નિશાંત મળ્યા તો ઉભા હતા નહીં તો એમાં રહેશે. શિવજી કહેતા ઓફિસ કરતા શિવજી કોણ ઓકે. चलो धन्यवाद बधाने हरे कृष्ण श्री प्रभुपाद जी वृंदावन सिंह दादोदम जी गलभ्य कृपा सिंधु कविताभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम वैष्णवृंदगी गण गाय प्रभु की जय रघुनायक प्रभु की जय हरि गौ हरे कृष्ण धाम दोतरा भक्त वृंद की जय महाप्रसाद की
जय जय जय
दादा हरे कृष्ण क्या बधा रहे क्या लाई जाए क्या खरीदा होता क्या खरीदा
तो आपको ना कहूँ।